ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਬੇਦਰ ਹੈ ਮਾਨ ਮਹਾਨ ਜਿਨ ਵਿਚਰੇ ਹਮਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਗਮ ਗਾਥਾ ਨੰਬਰ 37 ਕਲ ਚਲੀ ਥੀ, ਆਜ ਚਾਰ ਗਾਥਾਏ ਚਲਾਂਗੇ, 38, 39, 40, 47 ਇਹੀ ਤੱਕ ਕਾ ਪਾਠ ਅਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਥਾ ਔਰ ਬੜਾ ਦੀ, ਯਹੀ ਸੋਚਾ ਥਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਅਪਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋ ਕਰੇਂਗੇ ਪੂਰਾ, ਤੋ ਆਜ ਔਰ ਕਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਰ ਗਾਥਾਏ ਅਪਨ ਪੂਰੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋ ਚਾਲੂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਪ੍ਰਵਚਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਆਧ ਦਿਨ ਬੀਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਪੜੇ ਤੋ ਅਲਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਹਮਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਭ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬਾਰੇ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨਕੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਸੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਪੜ੍ਹੇ ਜਰਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਕੀ ਚਾਰ ਗਾਥਾਏ ਪੜ੍ਹੇ, ਚਾਰ ਗਾਥਾਏ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ
ਜੇਨੇ ਵਹੀ ਸੰਜਾਇਆ ਜੇ ਖਲੁ ਨੱਠਾ ਭਵੀਯ ਪਜਾਇਆ ਤੇ ਵੋਂਤੀ ਅਸਭੂਦਾ ਪਜਾਇਆ ਨਾਣ ਪਚਖਾ ਜਦਿ ਪਚਖ ਮਜਾਦਮ ਪਜਾਯਮ ਪਲਯਿਦਮ ਚ ਆਣਸ ਰਹਵ ਦਿਵਾਤਮ ਨਾਣਮ ਦਿਵੰਤੀ ਕੇ ਪਰੂਵੇਂਤਿ ਅਥਮ ਅਖਣਿ ਵਿਦਜਮ ਈਹਾ ਪੂਵੇ ਜੇ ਵਿਜਾਣਂਤਿ ਤੇ ਸਿਮ ਪਰੋਖ ਭੂਦਮ ਨਾਗੁਮ ਸਕੰਤਿ ਪਰਣਤਮ ਅਪਦੇਸਮ ਸਪਦੇਸਮ ਮੁਤਮ ਮੁਤਮ ਚ ਪਜ್ਜਯਮਜਾਦਮ ਪਲਯਮ ਗਦਮ ਚ ਜਾਣਦਿ ਨਾਣਮਦਿੰਦਿਯਮ ਭਣਿਯਮ।
ਦੇਖੋ ਅਬ ਹਿੰਦੀ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਨ ਚਾਰ ਗਾਥਾਓ ਕਾ ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਹੋਗਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਕੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਤੀ ਜਾਏਂਗੇ, ਇਨਕਾ ਅਰਥ ਐਸੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ
ਤੇਰੀ ਆਏ ਜੋ ਅਨੁਬੰਨੀ ਹੈ ਯਾ ਨਸ਼ਟਿ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸਦਿਭਾਵੀ ਵੇਸਵੀ ਪਰਿਆਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੱਚ ਹੈ ਪਰਿਆਏ ਜੋ ਅਨੁਤਪੰਨ ਹੈ ਯਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਸ਼ਟਿ ਜੋ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਵਯਤਾ ਯਦਿ ਜਾਤੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਵੋ ਜੋ ਇੰਦ੍ਰਿਯ ਗੋਚਰ ਅਰਥ ਕੋ ਇਹਾਦਿ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਤੇ ਬੇਪਰੋਕਸ਼ ਪਦਾਰਥ ਕੋ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨਵਰ ਕਹੇ ਸਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਮੂਰਤੀ ਔਰ ਅਮੂਰਤੀ ਕੋ ਅਨੁਤਪੰਨ ਵਿਨਸ਼ਟਿ ਕੋ ਜਾਣੇ ਅਤੀਂਦ੍ਰਿਯ ਗਿਆਨ ਹੀ।
ਅਪਨ ਐਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ ਦੇਖਾ, ਮਾਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਹਮ ਉਸੇ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਸੇ ਜਾਣੀ, ਤਰਕ ਸੇ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਖ ਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੋ ਉਸਕੋ ਹਮ ਪਰੋਕਸ਼ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਵੋ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਿਆਏ ਜੋ ਅਨੁਤਪੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਆਏ ਅਭੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਥਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, वे सभी पर्याय असदभावी हैं, माने वर्तमान में वे नहीं है, इसलिए उनका नाम रखा असदभावी। लेकिन ज्ञान प्रत्यक्ष है, ज्ञान के द्वारा वो प्रत्यक्ष जानी जाती है। तो हम कहते सामने है ही नहीं, ये प्रत्यक्ष किसे कहते, प्रत्यक्ष तो सामने हो ना तब कहते हैं ना। हम कहते अरे वो सामने कहाँ है, तो वो प्रत्यक्ष कैसे हो सकती है ना, आप समझे ना। लेकिन वो कहते हैं प्रत्यक्ष की परिभाषा सामने होना नहीं है। सब न्याय शास्त्र में क्या है, विशुद्धम प्रत्यक्षम, जो अत्यंत निर्मल ज्ञान है जिसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। केवल भगवान के ज्ञान में जो पर्याय वर्तमान में विद्यमान हैं, वे पर्याय उनके समान ही जो पर्याय वर्तमान में विद्यमान नहीं हैं, नष्ट हो गई हैं अथवा पैदा ही नहीं हुई हैं, थोड़ी थोड़ी छाया रहती होगी, फिर दिखाते हैं तुम लोग वो पट्टी आंखों पे बांध दी और फिर कहते भाई चलो बचल देता है पढ़ देता है, तुम कहते नहीं नहीं कुछ थोड़ा थोड़ा दिखता होगा, जरा देखो ढंग से नहीं बांधी है, फिर देखते हैं कि कैसी बनी। तो ऐसे ही वो केवल ज्ञान में कि बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके जान लेते हैं प्रत्यक्ष एकदम, तो हमें शंका होती ना चित्त में कि है ही नहीं तो कैसे जान लेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन पर्याय वर्तमान में हैं नहीं, हम ये माने बैठे हैं वे कथनचित हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो स्वकाल में हैं और सर्वज्ञ भगवान के लिए काल का भेद रहा नहीं है, इसलिए वो प्रत्यक्ष हैं। ये उनके ज्ञान में वो प्रत्यक्ष हैं, ये बात ही सिद्ध करती है कि वे हैं। वो निषेध है वो तो किसी अपेक्षा है, ये द्रव्य अनादि अनंत है ना, भूतकाल की पर्याय नष्ट हो गई, भविष्य की नदियां पैदा नहीं भई, तो फिर एक ही समय का रह जाएगा ना, इतना नष्ट हो गया, क्योंकि पर्यायों का जो पिंड है अखंड उसी का नाम द्रव्य काल की अपेक्षा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जैन दर्शन में तुच्छाभाव नाम का अभाव होता ही नहीं। तुच्छाभाव समझते हो, जो अभाव होके कुछ नहीं रहे, बिल्कुल गधे के सिंह जैसा हो जाए, आकाश के फूल जैसा हो जाए, ऐसा अभाव नहीं होता। तो कैसा होता है, भावांतर स्वभाव। भावांतर स्वभाव का अर्थ यह है कि ये जैसा हम कह रहे हैं बस वैसा नहीं है, नहीं है वा नहीं है उसका अर्थ बस क्या। वो कहते हैं कि हम और तुम, हम हैं भी और नहीं भी, माने हम हैं भी और नहीं भी हैं हम। तो कैसे कि स्व की अपेक्षा है और पर की अपेक्षा नहीं है, तो हम तो नहीं हैं जो है वो पर की अपेक्षा नहीं है, हम नहीं है ऐसी कहां बात है, आप समझ रहे ना। जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है उसका तो दूसरे में अभाव बताया जा रहा है, उसमें थोड़ी अभाव है, हम में तो पर द्रव्यों का अभाव बताया जा रहा है। हम तो आप कहते शरीर में आत्मा है, शरीर में आत्मा है, क्यों कहते हैं नहीं कहते, शरीर में आत्मा है ना, तो ये हमारा शरीर है इसमें आत्मा है ना, और नहीं होता तो हम मर गए कहलाते, तो इस शरीर को जला देते क्यों, तो शरीर में आत्मा है ना। तो वो कहते हैं कि ना शरीर में आत्मा है ना शरीर आत्मा है, है ही नहीं, तो शरीर नहीं है, कि शरीर तो है और आत्मा, यहां आत्मा भी है और दोनों यही हैं, क्यों तो ये नहीं है कहां से लाए, कि यही एक आकाश के प्रदेश में दोनों रहते हैं, फिर भी शरीर जीव नहीं है और जीव शरीर नहीं है ऐसा अभाव जैन दर्शन में होता है। प्राग भाव, प्रधंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, जिसे अत्यंता भाव बोलते हैं वो भी तुच्छा भाव नहीं होता है। अत्यंत भाव है ही नहीं, अरे इसमें नहीं है। जीव का पुद्गल में अत्यंत भाव यही है। दो द्रव्यों का परस्पर में क्या होता है, तो दो द्रव्य होते हैं ना, उन्हीं में परस्पर अत्यंत भाव होता है ना। कि अब इतना अत्यंत लगा हुआ है वो फिर भी तुम खड़ा रखते हो, है ना, हम क्या करें। इसका इसमें अत्यंत भाव है कि हमें तो मिक्सर दिख रहे बराबर है। यही तो हम बता रहे हैं तुम्हें कि वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में दिखाई देता है। तो हम तो कहते हमारा ही ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष, हम ऐसा घटित करते हैं। हमारा आपका ज्ञान प्रत्यक्ष है ही नहीं, घबराना नहीं। क्योंकि हमारे तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो ही हैं, अवध ज्ञान नहीं है, हमें मन पर ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, तो सब पक्की बात है ना, इसमें किसी को शंका है। आप कहते हैं मति शुद्ध दो परोक्ष अक्ष मन तें उपजाई, अवध ज्ञान मन पर दो हैं देश प्रत्यक्षा सकल द्रव्य को वास जास नहीं बुलाता ना, सारे द्रव्यों को जाने वो केवल ज्ञान। तो हमारे तो दो ही ज्ञान है, जब तो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि जो हम जो प्रत्यक्ष कहते हैं वो तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। साम व्यवहारिक माने व्यवहार में दुनिया में कहा जाता है, वो वास्तव में नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं, एक कह रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है हमारे, तो किसी का प्रत्यक्ष हो किसी का परोक्ष हो ऐसा कैसे होगा। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। तू कहता है कि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव हुआ, तो अगर अनुभव प्रत्यक्ष होता ही नहीं, जरा समझना। तेरे को ज्ञान ही प्रत्यक्ष नहीं है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष जिसे ज्ञान कहते हैं, जिन्हें अनुभव करना है और जिन्हें अनुभव सबसे पहले होता है उनके प्रत्यक्ष ज्ञान होता ही नहीं है, तो केवल ज्ञान होने के बाद होता है। तो हमें प्रत्यक्ष करोगे तो केवल ज्ञान होने के बाद सम्यक दर्शन होगा कि सम्यक दर्शन पहले होगा। तो उन्होंने सब तरीके से सिद्ध किया। मेन तर्क यही है कि हमें ज्ञान ही नहीं है वो परोक्ष। एक एक गाथा आई ना इसमें, अवग्रह आदि पूर्वक जानते, क्या है गाथा, इहादि पूर्वक जानते, बोल पढ़ो।
वकि जानते बेपरोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिनवर कहे।
कैसी विचित्र बात है, ठीक लगती है आपको दादाजी, ठीक लगती है मुझे। क्या कह रहे कि जो इहादि पूर्वक जानते हैं वे परोक्ष पदार्थों को नहीं जान सकते। अभी तो सिद्ध ये कर रहे थे कि ये परोक्ष को जानते हैं, उसे परोक्ष कहते हैं, कह रहे थे ना, अभी कहते नहीं जानते। फिर पढ़ो उसे, यूज पर किताब नहीं किताब, अड़ोसी पड़ोसी में देखो कहाँ है वो, मैंने कहा जो इंद्रिय गोचर अर्थ को, इंद्रियों से दिखाई देने वाले पदार्थों को इहादि पूर्वक जानते, माने अवग्रह इहा अवाय धारणा ऐसा इन रूप में जानते हैं, वे परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिनवर कहें। जैन भगवान कहते हैं कि वे परोक्ष पदार्थों को नहीं जानते, नहीं जान सकते कि जान सकते, क्या होना चाहिए प्रदीप जी। अब यहां परोक्ष का क्या अर्थ है, देखो परोक्ष माने सुमेर पर्वत, माने बहुत दूर है, जो क्षेत्र से दूर हैं, काल से दूर हैं, समझ गए ना, जो भाव से दूर हैं, सूक्ष्मता से दूर हैं, ऐसे पदार्थों को वो परोक्ष ज्ञान वाले नहीं जानते। तो क्या कह रहे कि परोक्ष ज्ञान वाले परोक्ष पदार्थों को नहीं जानते। भाषा की आप सुनिए, बहुत माता मानना पड़े कि हमें तो ऐसा शंका खड़ी हुई नहीं, क्या करें, तुम सोचते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो, फिर बराबर फटाफट नीचे का अर्थ पढ़ लिया और देख लिया, यहां पर ऐसा अर्थ आ गया हमारे जमाने में, लिखा ना वो पंक्ति देखो, जो इंद्रिय गोचर अर्थ को इहादि पूर्वक जानते, क्लियर है ना, वे परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिनवर्त है। तो परोक्ष पदार्थ को कौन जानता है, सब प्रदेशी अप्रदेशी मूर्त और अमूर्त को अनुत्पन्न विनष्ट को जाने अतीन्द्रिय ज्ञान ही, कि ये परोक्ष पदार्थ है सब, कौन कौन, सब प्रदेशी अप्रदेशी भौत पदार्थ है ना, मूर्त और अमूर्त, तो जिसमें और अनुत्पन्न और विनष्ट, इन सब को अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है, ये कह रहे हो, माने परोक्ष ज्ञान जो हमारे पास है वो इन पदार्थों को नहीं जान सकते। ये ज्ञान के स्वरूप के बारे में मैंने एक आध दिन समझाया था कि हम सबको जो जानने में क्रम पड़ता है, कैसे पड़ता है कि जैसे पहले दर्शन होगा किसी पदार्थ का, फिर दर्शन के बाद में अवग्रह होगा, अवग्रह के बाद में फिर उसको विशेष जानने का हम अंदर से हमें जिज्ञासा जगेगी और हम प्रयत्न करेंगे तो इहा होगा। इहा की परिभाषा यह है कि अवग्रह के जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने का जो यत्न करना उसका नाम क्या है, यह कहां लिखा, सर्वार सिद्धि में ऐसा स्पष्ट शब्दों में लिखा है। अब वो हमने इहा प्रयत्न करके जाना और जान कर जान तो रहे हैं लेकिन अभी नक्की नहीं हुआ, अवाय माने नक्की होना, निश्चित हो जाना कि भाई हमने अच्छी तरह जान लिया कि ये ए पदार्थ है। अब ये प्रक्रिया हुई ना, दर्शन अवग्रह इहा अवाय, अब हमने उसे जान लिया अच्छी तरीके से तो फिर वो हमारी धारणा में रखा गया, धारणा में चला गया, अन्य धारणा में नहीं जाए, अवग्रह अवाय धारणा है ना, तो फिर वो हमें याद नहीं आ सकता। धारणा में जो जो चीज पहुंच जाएगी वो कभी उनका फिर स्मरण हो सकता है, तो धारणा के बाद धारणा अवग्रह यह अवाय धारणा ये तो मची ज्ञान है, और फिर स्मृति, धारणा हो जाए तो स्मृति, स्मृति हो गए तो प्रतिविज्ञान, और प्रतिविज्ञान हो गए तो तर्क, तर्क माने व्याप्ति ज्ञान तर्क है, और तर्क हो गए तो अनुमान, ऐसा क्रम है हमारे जानने का। छोटामल जी ने रसपूर्ण चिट्ठी में ये लिखा कि तुम अनुभव की बात बता रहे कि अनुभव कैसे होता है, अब उसमें कभी जब मैं बात करूंगा तब करूंगा विस्तार से, ये ऐसा क्रम है, इसलिए परोक्ष ज्ञान क्रम से जानता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान माने केवल ज्ञान, वो बिल्कुल डायरेक्ट सीधा और एक समय में जानते हैं, उनमें क्रम नहीं है। अब आप ये देखते हो कि बहुत सी चीजें अपन को याद रहती हैं और बहुत सी चीजें याद नहीं रहती हैं, तो ऐसा कैसे होता है कि किसी ने गाली दी हो तो वो तो अगले भव में भी याद रहती है, मरते मरते बुढ़ापे में भी याद रहती है, और मरते मरते बेटे से कह जाता है उससे बदला लेना बेटा, और धर्म की बातें इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हम बताते हैं तो कल की बात पूछते हैं तो आप नहीं बता सकते, ये याद नहीं रहती है, तो ऐसा क्यों होता है। अब इसमें इस प्रक्रिया में समझो आप, जो आपको पहले अवग्रह फिर ईहा फिर धारणा हवा आए फिर धारणा हो गई पक्की, वही चीज तो स्मृति में आएगी। अब ये आत्मा की बात तुम अवग्रह ही करके रह जाते हो, बस यह नहीं करते हो, अवग्रह ही रह जाते। ऐसा क्यों कह रहा हूं प्रदीप जी? क्योंकि ईहा की परिभाषा क्या बताई थी? कौन बताएगा? इज्जत वाले मत बताना, मेरे विद्यार्थी बता सकते हैं। हाँ बोल, खड़ा खड़े हो गए बोल। अब वो तूने ये हमने जो श्वास समझाई वो तेरे अवग्रह में तो चली गई, इंद्रियों से अंदर तो पहुंच गई, कान अच्छे थे तो समझ में आ गई। अब तूने उसे विशेष जानने का प्रयत्न ही नहीं किया तो ईहा ही नहीं हुआ। क्या करना चाहिए? कम से कम इतना प्रयत्न तो करे कि मुझे ये जब घर जाऊं यहां से, घर मैंने अपने गांव नहीं, यहां जो कमरा लिया है उसमें, तो तब याद आ जाए कि क्या कहा था, तो मैं वहां विचार कर सकता हूं, शास्त्र से देखने का विकल्प आए तो मिलान कर सकता हूं, शास्त्र पढ़ सकता हूं। अब्बू यहां यही नहीं हुआ। अब इतनी भी याद नहीं, इतनी भी नहीं रही, वो धारणा तक पहुंचेगी तब वहां पर घर पर याद आएगी। अब्बा कैसे आएगी जब घर पे ही याद नहीं आ रही अभी कि क्या कहा था आज, ख्याल में है ना है? तो क्या बोलो क्या? तो ये जो अच्छी बातें हैं वे आपकी अवग्रह तक होके रह जाती हैं, और शास्त्र की ये बात है नहीं, जो लोगों की जैसी रुचि होती है उनके अनुसार होता है। अब जैसे मैंने कहा मुझे ऐसा, मैं ध्यान दे पड़ता हूं तो मुझे सब अवग्रह या वगैरह सब हो जाता है, तो मुझे सब याद रहता है, शास्त्र की बात। और नाम में आपको आप लोगों के भूलने लगा हूं, तभी तो अशोक तुमसे भी कहूंगा क्या? क्या नाम, क्या नाम तुम्हारा? ऐसा मुझे पूछना पड़ता है कि क्या नाम, तुम्हारा नाम भी भूल जाऊं प्रदीप जी। अरे हम तो इतने एक साथ रहे, इतने बात गए, अब तो विवाहित ही हैं, कैसे कैसे भूल जाओगे? हम नहीं भूलने देंगे, अब क्या करें? समझे ना? ये माताएं बहनों को वो सब बातें क्यों याद रहती हैं झगड़े की? ये क्यों नहीं रहती? क्योंकि उनका अवग्रह या धारणा सब, विचारना विचारना सब होता है। आखिर उसने ऐसा कही क्यों? वो होते कौन है? हमारे बारे में ऐसा कहने वाले होते कौन हैं? बराबर गंभीरता से विचार करते हैं, ख्याल में आई ना? और इस बारे में विचार ही नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं इंद्री गोचर अर्थ को ईहादि पूर्वक जानते। अब समझ में आई? ईहादि पूर्वक जानना माने क्या है? माने उसको जानने की जिज्ञासा होती है। देखो दर्शन में तो क्या हुआ, कुछ है इतना, उसमें वो विकल्पात्मक नहीं हो, एक कुछ है तो मैं बोल रहा हूं, ये भी विकल्प नहीं होता उसमें, वो तो निर्विकल्प ही रहता है दर्शन तो। फिर उसमें ये कुछ है हुआ, ये तो अवग्रह में आ गया। फिर कुछ है तो क्या है ये जानने का प्रयत्न हुआ तो ईहा हुआ। फिर उसे नक्की कर लिया कि ये ही है तो वो अवाय हुआ, अवाय हुआ मैंने नक्की हो जाना, और फिर वो नक्की हो गया और फिर हम अपने काम में लग गए, भूल गए, धारणा में नहीं लिया। इसलिए अब एक बात को अपन को दो दो तीन तीन दफे रिपीट करके कहना और सुनना इसलिए जरूरी है, क्यों आपको इतना समय मिल जाना चाहिए कि आप धारणा तक उस बात को ले जाएं। नहीं मिलेगा तो आप फटाफट अगले विषय में लग जाएंगे, तो वो बात ख्याल में नहीं आएगी। आप मेरा मतलब समझ गए? यहां तो आपको जो सुनना है वो इतना ही सुनना है कि मेरी बात जो सुनी है, क्या कहना चाहता हूं वो आपको कमरे तक याद रहे, बाकी काम कमरे में करना है। ये कमरे में तो फिर बहुत काम है, आपको बहुत काम है कमरे में, सोचना ही नहीं है तो गया, बस सुनते रहना सारी जिंदगी, ऐसा ही निकल जाएगा। सचमुच कह रहा हूं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं तुम तो समझते हो ना, यहां आगे बैठे हमने एक घंटा तो धर्म हो रहा है ना, वो सब नहीं होगा, वो ज्ञान नहीं होगा तो नहीं होगा, पुण्य तो बनेगा। ऐसा बस है, पुण्य तो बनेगा। किसी ने हमें समझाया था कि पूजा से भी ज्यादा पुण्य प्रवचन सुनने में लगता है। अच्छा, इसीलिए तुम आने लग गया। बात तो ये 100% सच्ची है, क्योंकि इसमें सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा ये बताया सुनते हो तुम, और उपयोग तुम्हें लगाना पड़ता है। पूजा में तो नहीं लगाओ तो चलता है। कई दफे अपन सामूहिक पूजन करते हैं तो ऐसा नहीं होता शांतिलाल जी कि सब लोग जल से फल तक पहुंच जाते हो, हम जल पर ही अटक के रह जाते हैं। खासकर मेरे साथ होता है, वो पंक्ति पे मैं सोचने लगता हूं, बगल वाला परेशान करता है कि हो गया ये चंदन लो डॉक्टर साहब, फिर उसे चंदन लेके देते, फिर अच्छा। तो मैं कहता हूं तुम क्यों परेशान होते हो, तुम अपना चढ़ाओ ना, कि आपका रह जाएगा तुम्हारा तो नहीं रहेगा। माने अपना उपयोग एक जगह लंबा जाए तो आजल से लेके हम फल तक पहुंच जाते हैं, ऐसा होता होगा कभी, आप ध्यान देना। और आगे बढ़ते इसलिए रहते हैं क्योंकि भाई 8-10 आदमी कर रहे हैं तो चलती रहती है गाड़ी यहां से वहां यहां से वहां, लेकिन इधर नहीं कर सकते आप तो नहीं, आपकी समझ में नहीं आएगा। यहां तो आपको बहुत उपयोग लगा के सुनना पड़ेगा ना, जो मैं बार बार आपको गाथाएं पढ़वाता हूं, पढ़ता हूं, इनसे करता हूं, थोड़ी मुझे भी आराम मिल जाता है, और आपको वो रिपीट होगा, वो बार बार रिपीट हो। अब ये 10 गाथाएं का अपन ने 10 दिन पाठ किया, रोजाना पाठ किया, प्रभु खूब उन पर घिसाई की, तो ये 10 गाथाएं तो याद हो जाना चाहिए। हो गई क्या? क्यों? क्योंकि रोज ही ना अपग्रह तक किया, बस यहां तो किया ही नहीं, आवाज धारणा में गया ही नहीं, तो वो बात हमारे ख्याल में नहीं आती। अब यहां क्या कह रहे हैं, दादा मामला उल्टा है। ये कह रहे हैं कि वे जो परोक्ष, उन्हें क्या कह रहे हैं, परोक्ष पदार्थ जो केवल ज्ञानी के प्रत्यक्ष हैं और अपन को दिखाई नहीं देते हैं प्रत्यक्ष, उनका नाम क्या रखा, परोक्ष पदार्थ। कहते हैं कि वो परमार्थ ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना परोक्ष पदार्थ नहीं जाने जा सकते। अब परोक्ष पदार्थ में कौन कौन है सोचो, परोक्ष में कौन कौन है, इसमें लिखा है इन गाथाओं में, पढ़ो पढ़ो मैं बताऊं। अब अप्यदेशम सप्यदेशम मुत्त अमुत्तम च पज्य मजादम पल गदम च जानदी तमनान मतीन्द्रियम भणियम। तो अप्यदेशम सप्यदेशम, अप्रदेशी पदार्थ माने एक प्रदेशी पदार्थ और बहुप्रदेशी पदार्थ, पंचास्तिकाय और नास्तिकाय वाले पदार्थ, और मुत्तम माने मूर्त पदार्थ और अमूर्त पदार्थ, और अजादम पज्जयम जो पैदा नहीं हुई बेपर्याय, और प्रलय को प्राप्त हो गई बेपर्याय। तो ये सब पदार्थ परोक्ष हैं कहती। वो मूर्त पदार्थ जो है माने जो पुद्गल है वो तो मूर्त दिख जाएगा तुम्हें, लेकिन वो आत्मा है, वो अमूर्त है ना, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान वाले को दिखेगा, तुम परोक्ष ज्ञान वालों को नहीं दिखेगा, ये कह रहे हो। अब इसको पढ़ना, गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना, ये सब पढ़ना है इसमें, तो आपको समझ में आए क्या कह रहा हूं मैं। मैंने ये 2 गाथाएं छोड़ के और 3री गाथा पढ़ा रहा हूं आपको, पता, क्योंकि आधे लोग कल भग जाने वाले हैं, तो ये तो सुन जाए कम से कम। देखो, इंद्रिय पूर्व गोचर अर्थ को इहादि पूर्वक जानते, माने उन पदार्थों को जो इंद्रियों से जाने जाते हैं, उन पदार्थों को माने परोक्ष पदार्थों को, माने जो परो हमारे परोक्ष ज्ञान से जो जाने जाते हैं वे, ये नाम जो इहादि पूर्वक जानते, इहादि का प्रयोग करें तो अवग्रह आदि क्यों नहीं लिखा, तो अब आया जी क्यों नहीं लिखा तो है समझना, क्योंकि अवग्रह तक तो वैसा ही होता रहता है सबको, समझे ना। यहां में आपका प्रयत्न अपेक्षित है, तो आपने कुछ प्रयत्न किया क्या नहीं किया क्या, तब वो आगे बढ़ेगी अवग्रह ही अवाय धारणा, और यह के बिना अवाय नहीं होने वाला है, अवाय के बिना धारणा नहीं होने वाली है, धारणा के बिना स्मरण नहीं होने वाला है। पृथ्वी ज्ञान नहीं होने वाला है, अनुमान नहीं होने वाला है, फिर आगम की बात आएगी, आगम में तो ये सब बातें लिखी हैं। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या लिखा है मालूम आपको, कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है। कि पहले का आगम, कि हमने आगम से आत्मा का स्वरूप पढ़ा, प्रत्यक्ष तो हम देख नहीं सकते जतीश भाई, और देखेंगे भी आपके हिसाब से, जब अनुभव हो जाएगा तब देखेंगे। मैं तो यही कह रहा हूं, नहीं देख तब भी नहीं देखोगे, लेकिन तुम्हें विकल्प हो तो तुम वहां की बात में बहस करना, अभी बहस करने की जरूरत नहीं है। यानी आत्मा को वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें इंद्रियों से तो देख नहीं सकते, परोक्ष पदार्थ को तुम इहादि पूर्वक आए इसे जाके तो देख नहीं सकते, तो आगम से देखा तुमने, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते तो आगम, आगम परोक्ष है। तो कहते तुमने जैसा वस्तु का स्वरूप समझा, वास्तव में जैसी वस्तु है वैसा, सही आगम तो वो ही है, और वो आगम ज्ञान सही है कि तुमने जो वस्तु जैसी है वो आचार्यों ने प्रतिपादित की, हमारी समझ में वैसी ही आई हो, यदि कुछ अन्यथा आई होगी तो काम नहीं होगा। क्या समझे, वैसी आगम से हमको वैसी आना चाहिए समझ में, सयोक्ष ज्ञान में, जिसे परोक्ष ज्ञान कह रहे हैं अभी से। अब क्या कहें आगम ज्ञान से, अब स्पष्ट नहीं, क्या कहते साफ दिखता होगा ना अनुभव में, आज बिल्कुल साफ नहीं दिखता है, अभी तक यही धारणाएं बना रखी हैं। तो रमन जी ने लिखा है कि प्रत्यक्ष तो दिखता ही नहीं, अभी अनुभव प्रत्यक्ष की बात करेंगे, तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि जैसे इंद्री से प्रत्यक्ष दिखते हैं उतना साफ भी नहीं दिखता, जो मुझे रूमाल दिख रहा है ना जितना क्लियर, अनुभव करेंगे ना सम्यक दृष्टि, सहायक सम्यक दृष्टि, तो उन्हें आत्मा इतना साफ भी नहीं दिखेगा। बोलो करना अनुभव कि नहीं करना, हम तो कहना कितना सूरज जैसा चमकेगा, एकदम चकाचौंध हो जाएंगी वो आंखें, ध्यान में मिट जाती, इसलिए मिट जाती है ना, सूरज दिखता है उन्हें, वो अनुभव में आत्मा इतना स्पष्ट प्रत्यक्ष भी ऐसा भी नहीं दिखेगा, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं होगा उसका। अब वो कह रहे थे तो उसमें जो तुमने जाना आगम से, उसमें परिणामों को मगन करना ये अनुभव की विधि है, ये अनुभव करने वाला ये करता है। अब जो उसमें जाकर जितना उपयोग मगन हो जाए वो उसमें अनुभव हो जाता है। फिर उन्हें कहा दूसरा कि ना सही आगम से, फिर अनुमान से, तो अनुमान से वो फिर अनुमान कैसे होता है, कितनी चीजें चाहिए, पहले अवग्रह चाहिए, फिर ईहा चाहिए, फिर अवाय चाहिए, फिर धारणा चाहिए, फिर स्मृति चाहिए, फिर पृथ्वी ज्ञान चाहिए, फिर तर्क चाहिए, तर्क माने फिर नियम, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, जहां ज्ञान होता है वहां आत्मा होता है, जहां आत्मा होता है वहां ज्ञान होता है, अन्वय और वितरिक दोनों ही घटित होते हैं, ऐसा मतलब समझ गए ना। फिर तब वो अनुमान से जानेगा, तो वो भी परोक्ष है, आत्मा के प्रदेश वहां भी दिखने वाले नहीं है, और कोई ज्यादा निर्मलता, क्योंकि वो तो नियम ही है कि वो निर्मल नहीं होता वो ज्ञान, उससे जाना अनुमान से। फिर कहते हैं कि हमने पहले जाना था आगम से, अनुमान से, अथवा गुरु जी के मुख से सुनकर, वो आगम हो गया, आगम अनुमान ये जाना था, फिर हमारी स्मृति में था तो हमने स्मृति में लाए, तो वो हमें याद आएगा आत्मा। कौन याद आएगा? जो गुरु ने बताया था, जो शास्त्र से हमने समझाया था, और उसमें परिणाम मगन करता है। तो वो कहते हैं ये सब चीजें परोक्ष हैं, इसलिए अनुभव परोक्ष है। ऐसा लगा उसमें पढ़ना है स्पूर्ण चिट्ठी में, ये सब चीजें परोक्ष हैं ये जाना है। और फिर इतना लिखा है कि अनुभव हो जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जग जाएगी, आनंद आ जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर उपयोग बाहर आएगा। अब इससे जो खतरनाक बात है कि वो जब बाहर आएगा तो नया कुछ सीख के नहीं आएगा, उसके ज्ञान में रंज मात्र वृद्धि नहीं होगी। कैसा लगे? नया कुछ जानने में आता नहीं, वो ही आत्मा है ना, जो उसी का तो चिंतन किया है ना, तो उसी के बारे में उपयोग में स्थिरता आई होगी, जो तुमने आगम वगैरह से जाना है। प्रत्यक्ष तो दिखा नहीं हुआ, जो नया आए फिर तुमने इसी में परिणाम मंगन किए। अब जो ये कहते हैं कि मेरे अनुभव की बात है, मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूं, वो सफेद झूठ है, क्योंकि उनका ज्ञान भी जो ऐसा कहते हैं, पहले आगम से उनने सीखा था, अनुमान से सीखा था, उससे जो हुआ था वो ही ज्ञान उनके पास है, और वो जब बाद में आगम पढ़ेंगे तो वो ही आएगा। इसलिए वो अनुभव के बारे में इसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आत्मा को यहां देख देख के आपको समझाऊं और आपको मानोगे वो अनुभवी है, और ये अनुभवी की बात है, और ये तो कोई कोरे पंडित हैं, इनने तो कोरा जाना ही है। अब आगम से जानना जाना तो वो पंडित कहलाता है, तो तुमने आगम का अपमान किया। तर्क से जाने, युक्ति से जाने तो वो पंडित कहलाता है, तो तुमने उसका अपमान किया, उस ज्ञान का अपमान किया। विधि तो वो ही थी और आपको हुआ तो है नहीं, जरा समझना, और तुमने उसका ही तिरस्कार कर दिया। बस हम तो पढ़ेंगे, उनको अटक नहीं है, कि स्वाध्याय करने की उनको अटक नहीं है। अटक नहीं है क्या अर्थ होता है? कि पढ़ने की जरूरत नहीं, किसने कही है? ये कहा कि उनका काम अटका नहीं है उसके बिना, क्या वे नहीं पढ़ सुनेंगे तो पढ़ के जान लेंगे, अटका नहीं ना काम। अब कह रहे आप काम अटका नहीं, अटक नहीं है का मतलब ये है कि उसके बिना उनका काम अटकेगा नहीं, वे आगम में पढ़ लेंगे, गुरु के मुख से जान लेंगे, गुरु के मुख से नहीं मिलेगा सुनने को तो आगम से जान लेंगे, आगम से नहीं मिलेगा तर्क युक्ति से जान लेंगे, समझे ना। ये कहते हैं कि वो ही है, और बाद में भी सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके बाद स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं, उसके बाद भी प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना चाहिए कि नहीं, मैंने सब मिथ्या दृष्टियों को ही सुनना चाहिए, सम्यक दृष्टियों को नहीं सुनना चाहिए, भगवान के संबोधन में सब मिथ्या दृष्टि होते होंगे। गणधर देव ने भजन भाई मिथ्यात्व की भूमिका में तो सुने ही नहीं महावीर को, और जब सम्यक दृष्टि हो गए, मन पर ज्ञान के धनी हो गए, द्वादश अंग के पाठी हो गए, तब उनको दिव्य ध्वनि सुनने को मिली, तब खिली, क्योंकि गणधर के बिना तो वो अटकी थी। और वे गणधर कब बने? मुनि गणधर बनता है, गृह थोड़ी गणधर बनता है, समझ में आए ना आपकी ने? तो उन्हें कहां मिला महावीर से कुछ? जो कुछ था उनके उपादान से, उनके अंदर से आया ना, और उनका उपादान तैयार था, बस समझ लीजिए एकदम है। अब वो सौधर्मेंद्र ने कहा और वो चले आए, लड़ सकते थे, नहीं मैं तुम्हारे गुरु के पास नहीं जाऊं, तुम अपने गुरु को यहां लाओ है? क्यों ये नहीं तो कह सकते थे? थोड़ा सा अभिमान आ जाता तो कह देते कि मैं नहीं जाता कहीं, जिसको आना हो मेरे पास आए, बस बात खत्म थी। ये कहते हैं कि वो पलयम गदम च जानादि, इनको वो नहीं जानते हैं परोक्ष ज्ञान वाले, ख्याल में ना। तो वो ये कहते हैं कि देखो मैं यहां तक मैं अपने इस विषय को लाना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे ये बात की। तो कहां से है कि जो भूतकाल की पर्याय हो गई हैं और जो वर्तमान की पर्याय हैं वो भविष्य की होंगी, वे तीनों पर्याय केवल ही भगवान के ज्ञान में प्रत्यक्ष हैं, माने उपस्थित हैं, माने विद्यमान हैं, लिखा ना वर्तमान के समान विद्यमान हैं। ये वर्तमान के समान बार बार क्यों कहते हैं, पुरानी पुरानी वाला में ये कि तुमको कोई थोड़ी अस्पष्टता उसमें लगती हो, वो अस्पष्टता और स्पष्टता का भेद मति ज्ञान में होता है, शुद्ध ज्ञान में होता है, परोक्ष ज्ञानों में होता है, वो केवल ज्ञान में नहीं होता। और ये अपन केवली की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो पर्याय नष्ट हो गई, अब ये चश्मा टूट गया और एक घोगे कहीं पानी वानी में चला गया, अब मैं इस चश्मा को जानने की कोशिश करूं, मेरा ये ज्ञान का गेय बने, तेरा समझना मुझे पता नहीं है अभी कितनी देर कितना समय है अपने पास, मार्मिक बात कहनी है इसलिए मैं जान है ना भी 5-10 मिनट है? हाँ तो ये जो मेरे ज्ञान का गेय बने ये चश्मा, तो ये टूट गया खत्म हो गया तो मेरे ज्ञान का गेय बन सकता है, जैसा अभी मुझे दिख रहा है कि ऐसा ही बिल्कुल स्पष्ट, इतना ही स्पष्ट, क्यों उसके बाद भी दिख सकता है, दिख सकता है क्योंकि वो स्मृति में आएगा, जो पहले मैंने प्रत्यक्ष जाना था उसे मुझे याद स्मृति में आएगा। इस बात को समझाने के लिए जो मेरा कई परसों नरसों सुबह टीवी के प्रवचन में आया था वो बात बहुत मार्मिक है, वो कितने लोगों ने सुनी है समझी मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी ज्ञान की दशा क्या है। आप जो तुम्हारा ज्ञान पुराना है वो तुम याद करते हो, हम कहते हमने बहुत ज्ञान कर लिया, पूरा तो मुझे समय सार याद है, पूरा प्रवचन सार याद है, मुझे एक एक गाथा याद है, एक एक ये है, ये क्या है तुम्हारा, ये जो जो है ना तुम्हारे ज्ञान में उपस्थित, ये क्या है, ये ज्ञान है, ज्ञान है कि ज्ञेय है, ये यदि ज्ञान है तो यूनिट ज्ञान है, ये शब्द आ जाता है, सुना किसी ने याद है, अगर हाथ उठाओ, यूज माने वो ज्ञान पहले उपयोग हो गया था, वो ज्ञान ज्ञान का क्या विचित्र स्वरूप है कि ज्ञान की ये संपत्ति है हमारे पास और प्रति समय नई पैदा होती है। हम पुराने ज्ञान तो हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि उसका तो गेय बन चुका, जो भी शास्त्र बना जो भी बना, अब जो नई पर्याय पैदा होगी उसी का गेय कोई नया बनेगा कि नहीं, पुराना जितना ज्ञान है जिसे आप ज्ञान कहते हो वो यूज्ड ज्ञान है, माने जिस ज्ञान की पर्याय का प्रयोग हो चुका है वो डेड है, वो मरा हुआ ज्ञान है क्या? अब उस ज्ञान से आप द्वारा नहीं जान सकते, कल के ज्ञान से आज नहीं जान सकते, अब आप क्या करेंगे, हम अपने वर्तमान की जो ज्ञान पर्याय आएगी ना तो उससे हम उस ज्ञान को जानेंगे, कौन से पुराने ज्ञान को, पुराने ज्ञान को कि गेय को, माने हम उसे जानेंगे और वो जानने का काम नहीं करेगा, तो वो ज्ञान है कि गेय, वो तुम तो नहीं तर्क ध्यान से देना, तो वो तो गेय बन के रह गया। अब हम क्या, हमारा किस काम का, क्यों कि हमारी वो ज्ञान पर्याय को और खा जाएगा, हमारी जो वर्तमान में हमारे पास आज हमें 100 रुपया मिलना है, हर रोजाना 100 रुपया रोज मिलते हैं, और हमारा पुराना जितना हो गया ये मकान ये जायदाद हमने बना ली, ये सब हमारी संपत्ति है ना पैसा, ये क्या करेगी, ये हमारे वर्तमान कमाई को खा जाएगी, इसकी झाड़ू लगानी पड़ेगी, इसका टैक्स देना पड़ेगा, समझ गए ना, आपने मकान ले लिया ना जमीन, वो जमीन एक करोड़ रुपए की जमीन है उत्तम चंद जी, आप उसमें रह नहीं सकते हो, बंगला बना के रहोगे नहीं, फिर क्या काम आएगी हमारे कि हमें टैक्स भरना है, कोई गुंडे उस पर कब्जा ना कर लें, हमें बहुत बहुत। तो वे सब हमारे वर्तमान समय को खाएगी, हमारी पैसे को खाएगी, जो हम आज मेहनत मजदूरी करके चार पैसे कमा रहे हैं उनके हम रोटी दाल खरीद के नहीं खा पाएंगे, वो मकान खाएगा, जिसके पास जमीन मकान नहीं है उसका कुछ नहीं, जितनी कमाई वर्तमान में जो जो खर्च करना हो करे। आपको जो संपत्ति दिखती है ना, वो संपत्ति का क्या काम? अरे साहब बहुत खर्चे हैं, मुंबई में तो यार फ्लैट पड़ा है तो उसका वो क्या लगता है, मासिक क्या बोलते हो उसे भैया तुम लोग, वो भरना पड़ेगा, खाली पड़ा हो तो भी भरना पड़ेगा। अभी ऐसा आया है कानून बसंत भाई, मैंने सुना कि वो मकान का 1,00,000 रुपए महीना किराया आता और आप छोड़ जाए और आपने किराए पे नहीं दिया तो साल में आपको 12,00,000 रुपए का इनकम होती ना उस मकान से, तो वो आपकी इनकम थी, उस पर टैक्स देना पड़ता। अब आपने उसे नहीं दिया किराए से तो अभी 12,00,000 रुपए इनकम मान के और इनकम टैक्स में जोड़ा जाएगा और उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा। समझ में आई? कोई नहीं रखेगा, क्या करेंगे हम मकान को रख के, खाएंगे क्या? ऐसे यहां है, ये जो जितने शास्त्र याद है ना, घबराना नहीं, ये हमारे पुराने ज्ञान के गेय है और हमारे नए ज्ञान की जो पर्याय पैदा होती है उसको खा जाते हैं, उसके गे बनते हैं द्वारा, जब तो सुनाते हैं बच्चे यहां, उसके गे बने तो उस ज्ञान की पर्याय से हम जो नया जानते वो हम नया जानने से वंचित रह गए। बस क्या पंडित रूपचंद जी, ठीक है मैं सही पहचान रहा हूं, एक ये बात ख्याल में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, माता बहने आपकी ख्याल में आ रही है, ये जो पुरानी चीजें आपको याद है किसने कब गाली दी थी क्या किया थी उसे आप याद करती हो तो वर्तमान में जो ज्ञान की पर्याय पैदा हुई जिससे आप आत्मा जान सकती थी उससे आपने वो पुरानी चीज जानी जो किसी काम की नहीं है, जो आपको आज भी याद आती है तो दुख होता है कि उसने ऐसी गाली दी थी हमें, वो दुख होता है, बोलो क्या फायदा हुआ। मेरी स्मृति बहुत अच्छी है, अच्छा है कि बुरी है? स्मृति बहुत अच्छी है माने मेरी वर्तमान ज्ञान पर्याय मेरी पुराने बेकार की बातों में बहुत बर्बाद होती है, ये है स्मृति अच्छी होने का नाम। क्यों? अब मेरी स्मृति कमजोर हो रही तो हो जान दो ना कमजोर, क्या करना, अभी भाग्य से शास्त्र याद रहता है और आदमियों के भूलने लगा, चेहरे भी भूलने लगा, क्या 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 नाम तुम्हारा, क्या नाम तुम्हारा, हर एक से ऐसा पूछना पड़ता है। अब वो लगता होगा मजाक कर रहा है क्या कर रहा है, आ जाएगा 15 मिनट बाद याद, अभी नहीं आता, मौके पर नहीं आता, वो सामने खड़ा है नहीं आता, 15 मिनट बाद तो याद आएगा ना, चलो इतना तो अच्छा है। अच्छा नहीं है वो 15 मिनट मेरे दिमाग को खाएगा, वो 15 मिनट मेरे वर्तमान ज्ञान की बर्बाद करेगा, मैं सोचता रहूंगा उसी का नाम सोचता रहूंगा, तो क्या जरूरत है उसका नाम मुझे याद नहीं आए तो क्या जरूरत है उसके नाम को याद करने की, वो तो माथा मारने की जरूरत क्या है। लिखा टोडा मंत्री ने कि आपने स्मृति में आपने पहले सर्वज्ञ भगवान की वाणी समोषण में जाके सुनी थी, किसी ज्ञानी धर्मात्मा को सुना था, गुरुदेव को सुना था, शास्त्र को पढ़ा था, लाना हो तो उसको लाना, तो वो तेरी देशना लब्धि का काम दे जाएगी, उससे तेरे को सम्मान दर्शन हो जाएगा। पहले सारे कसाई के झगड़े दे हुआ था, ये हुआ था, इन सबसे क्या होगा जी भाई, बोलो सोचे हम। ये कल परसों के सुबह के व्याख्यान में आया था, मैं वो भी सुनता हूं, मैं अपना प्रवचन भी सुनता हूं, मैं एक मिनट बंद नहीं रखता हूं अपना स्पीकर, सुबह 4:45 बजे से रखता हूं, गुरुदेव की पहली त्रिंकुर की आवाज मैं सुनता हूं पूरी, और फिर कुछ नहीं छोड़ता, तालू ही रखता हूं। मैं घूमने इधर आ सकता हूं बाहर, लेकिन मैं अपने घर में ही घूमता हूं आध घंटा पौन घंटा। क्यों? कि वो गुरुदेव का प्रचार नहीं मिलेगा। बाहर चला जाऊंगा ठंडी हवा तो मिलेगी, लेकिन प्रवचन नहीं मिलेगा। फिर मैं मालिश कराता हूं, तो जो भी चलता है वो सब सुनता रहता हूं। फिर मेरा प्रवचन वही चलने आ जाता है, वो आ जाता है तब भी मैं स्नान घर में करने जब तक नहीं जाता तब वो खत्म नहीं हो जाए। फिर जब आप लोग ये कुछ करने लगते हो ना, ये सूचनाएं देने लगते हो, उसके बीच में फटाफट स्नान करके आ जाता हूं। क्या करूंगा सुन करके, वो सूचनाएं सुन के क्या करूंगा, पर लिस्ट सुन के भी क्या करूंगा कि इसने इतने दिए, इसने इतने दिए, इसने इतने दिए। उस सवाल में नहाता है जतीश भाई। अपने ज्ञान, वर्तमान ज्ञान में यदि अभी क्षमता है तो उसका जितना सही उपयोग हो जाए उतना करना चाहिए ना। देखो पढ़ो, जो जिसका अर्थ मैं कर रहा हूं, जो इंद्रिय गोचर अर्थ को अब मैं पहले दिन आपसे कहा था कि आप अच्छी तरह से इसका अर्थ समझ लो, रोजीना विचार करना। मैं आपको बताता हूं इसका, पुराने के छंदों का कुछ अर्थ बताया भी था, विचार करना। लेकिन आपने बराबर पढ़ा और आपको एक ख्याल में आ रहा है क्या कह रहे, मुझे तो पहले ही क्या लिखाई, ये परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं के जाने, इंद्रिय गोचर अर्थ से इहादि पूर्वक जानते हैं, वे परोक्ष पदार्थों को जानते हैं और प्रत्यक्ष को नहीं जानते हैं, ऐसा ही है ना। ऐसे में तो उल्टा लिखा, वे जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं, जो केवल ज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं, जो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाने ही नहीं जा सकते हैं, तो उनको नहीं जानते, ये कह रहे हैं। क्यों? अब मैं खतरनाक बात कहता हूं कि नहीं जानते तो नहीं जानने दो ना, ये सब अप्रयोजनभूत है, घबराना नहीं। समाधान उनके जानने से नहीं होता। सुमेर पर्वत 1 लाख ऊंचा है कि कितना है, और जमीन में कितना गड़ा है, और बाहर कितना है, इससे संबंध नहीं होगा। फिर ऐसा लगता है कि अभी मैं 3 अनियोगों का विरोध कर रहा हूं, है ना। तो लोग टोडरमल जी को पेश कर देते हैं कि देखो टोडरमल जी ने 4ों का लिखा, प्रथम अनुयोग जानना जरूरी, फिर दिव्यांग योग जानना जरूरी, फलाना जानना जरूरी, वो पढ़ते हैं। मैं टोडरमल जी के विरोध में थोड़ी खड़ा हो सकता, मैं थोड़ी वो बात मानता हूं, मैं तो टोडरमल जी को मानता हूं सही बात, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं तुम वो भी तो सुनो। उन्हीं टोडरमल जी ने उसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 257 मैंने समझे ना 257 पेज पर लिखा है कि सम्यक दर्शन जो देशना लब्धि में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, देव गुरु शास्त्र, 7 तत्व, सुपर भेद विज्ञान, हितकारी अहितकारी भाव, बस इतनी चीजें जानने लायक। इसमें नहीं आया सुमेर पर्वत में क्या करूं, इसमें नहीं आया प्रथमान योग में क्या करूं, ये नहीं लगाया 24 संग्रह जीवन चरित्र जानना जरूरी है, उल्टा अर्थ मत लगाना। सम्यक दर्शन तुम्हें प्राप्त करना है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानो ना, ये सब अप्रयोजन भूत उसमें लिखा है, और उनको जानकर उसमें आगे बढ़ो। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था, इसकी पर्याय की स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है, यानी मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं। क्यों? ये बात जानो। उन्होंने दिया सिलेबस दिया है, सम्यक दर्शन होने के पहले उसका वर्णन है लब्धियों का, तो उन्हें सिलेबस दिया है। अब उस सिलेबस में वो चीज नहीं है तो नहीं है। मैंने कई दफे कहा शास्त्र में, और अभी भी कह निकल जाता है मेरे मुंह से कि मैं भरत चक्रवर्ती पर ऐसा कहानी लिखना चाहता हूं, ऐसी लिखना चाहता हूं जिसमें वो हर अंतिम बिंदु को टच करूं, कि यदि वो अधिकतम राग हो तो किस लेवल तक हो सकता है, अधिकतम वैराग हो तो चौथे गुणस्थान में किस लेवल तक हो सकता है, उसके भी मर्यादाएं मेरे ख्याल में है, पंचम गुणस्थान की भी ख्याल में है, आप समझिए ना। तो उन सबको मैं कथानक के माध्यम से लिखना चाहता हूं, तो मैं कहता रहता हूं, इसलिए कहता रहता हूं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं इनके दिमाग में घुस जाए तो मैं नहीं लिख पाऊं तो ये लिख देंगे, अब मेरे लोग पीछे पड़ गए कि साहब आप लिखो, बोलो आज लिखो। मैंने बहुत सोचा कि मैं वो लिखूं, नहीं होगा पूरा कि नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, क्या फर्क पड़ता, आप तो ज्यादा लिखो। जब देखो मेरा सोचना, तुम माताएं बहनें भी सुन लो कि मैं बहुत बढ़िया उपन्यास लिखूंगा, कोई भी आदमी उसे दो बार पढ़ेगा, एक बार पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा उसकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन किसी उपन्यास को कोई दो बार नहीं पढ़ता, पक्की है ना। और मैं ज्ञानानंद स्वामी की व्याख्या करूंगा तो दो स्वामी दिन में 100 बार पढ़ेंगे, हर दफे गीत गाएंगे, तो तुमके पहले गाएंगे बाद में गाएंगे, तो मैं ऐसा क्यों नहीं लिखूं जो निरंतर काम में आए। आप समझिए, मैं ऐसा क्यों छोड़ दूं। इसलिए मैंने पहले कुंकुम शतक का अनुशीलन लिखा, फिर मैंने ज्ञानानंद स्वामी का अनुशीलन लिखा, अब मैं समाधि पे लिख रहा हूं। यानी जो लोगों की निरंतर काम आए और मेरे काम आए, पूरा मुझे ख्याल तो आवे कि क्या होता है, कोई शास्त्र का नहीं छोड़ूंगा मैं, कहां जिसमें जरा भी समाधि मनन की चर्चा होगी, लेकिन मैं कोई गुलाम नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं, मुझे नहीं जच रहा है कि तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। हमें दुख तो गिनाए जा रहे हो, महोत्सव कह रहे, दुख का महोत्सव है, महोत्सव तो खुशी होती है, खुशी का होता है, उन दुखी दुखी ने वो गिना दिया, हम घबराने लगे कि हाय राम, हम लेखना में तो बहुत तकलीफ है, सीढ़ी हट जाएगा, कोई कोई खा जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा शेर खा जाएगा। अरे इनसे असंख्य गुण है मुनिराज, ऐसे हैं हुए हैं कि जिनको रंच मात्र भी तकलीफ नहीं हुई, संलेखना में रंच मात्र तकलीफ नहीं होती है, मैं आपसे कह रहा हूं, वो तो साधारण सा काम, ऐसी दमाई ली और देह बदल जाएगी, नहीं आ जाएगी, समझे ना, छींक आई नहीं दे आ जाएगी, कुछ नहीं, तकलीफ नहीं होती। कि तकलीफें तो बहुत बहुत आई, गिनाई है शास्त्रों में भी, अरे वो बीमारियों की तकलीफ है, अब तुम्हें कैंसर है, अब वो कैंसर की तकलीफ हो रही और तुम समझ रहे संलेखना की तकलीफ है, कैंसर से तुम्हारी देह छूटेगी तो तुम समाधि मैंने पहले लोगे कि नहीं, तो जो मरते समय तकलीफ होगी वह कैंसर की है या संलेखना की, भूखे की तो होगी, जब हम रोटी छोड़ देंगे और दूध छोड़ देंगे तो भूख की तकलीफ तो होगी ना, अरे जब भूख खत्म हो जाए तब छोड़ने की बात है, जब खाने में तकलीफ होने लग जाए और भूखे रहने में थोड़ा आराम मिले तब भूख की रोटी छोड़ने की बात है, जब तक रोटी खाने में आराम मिलता है तब तक रोटी छोड़ने की बात नहीं है। हमने वो आत्महत्या ये तो कहना नहीं चाहता हूं, मैंने जल्दी निपटा दू, जल्दी क्या क्या निपटाना है, क्या निपटाना जल्दी, माने तेरे को अब मरना संशय है और क्या जीवित जीने की इच्छा हो गई, क्या तुम्हें जीऊं 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 मरू नहीं, और अब मरू 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 जल्दी जल्दी मर जाऊं, निपट जाए कर जल्दी, क्या निपटना। हमारी संलेखना तो ये है कि चाहे लाखों बरस तक जीऊं चाहे मृत्यु आ जाए, मरने हो तो मरे। वो सबसे बढ़िया वाक्य है जो मैंने कल आपको सुनाया था, कौन सा, ढूंगो माई के जाओगी कि हाँ जानेंगे, कि ढूंगो सास में जाओगी कि जानेंगे, कि मरोगे कि हम मरने को तैयार हैं, कि बच्चे रहोगे बचने को तैयार, जो जो तुम्हें हो कर दो, क्यों? कल प्रवचन करोगे पंडित जी के, नहीं करोगे? क्या करना है बोलो? हम चाहते हैं करो, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? कहीं अभी कल नहीं, वो आ गए ना, तो उन कल उनका होगा, तो हम आपसे जरा माफी मांगते। काहे को माफी मांगते हो? हमें आराम मिलेगा, थोड़ी तकलीफ थी गले में, आराम मिलेगा, काहे माफी काहे की मांगना? हम तो खुश हैं, कराओ तो खुश, नहीं कराओ तो खुश। आप समझ रहे हैं ना, ये परिस्थिति है, मरने तो खुश, नहीं मरने तो वहां है ही नहीं मरण। मैं एक बताना चाहता हूं कि मरण में रंज मात्र दुख नहीं है, जो दुख है वो सब बीमारियों का है और चीजों का है, तो वो तो होने ही वाला है, उससे आप बच नहीं सकते, और उससे बचाव करने का इलाज तुम करो, ये आज्ञा संलेखना में है आपको। जल्दी मर जाओ और नहीं लो दवाइयां, ये नहीं है, लेकिन आपकी मर्यादा में। कोई मांस मदरा की बात करे तो नहीं, मेरा मतलब समझ गया ना, उल्टा अर्थ नहीं है बहुत। ये वस्तु का स्वरूप हमारे ज्ञान, ये ज्ञान में है ना अभी, जो याद रहता है वो, बाकी हम भूलने लग गए। रूपचंद जी आप भी भूलने लग गए हो थोड़े थोड़ा, तो अब हमारे पास जो ज्ञान थोड़ा बहुत बचा है और अभी याद रहता है, तो कम से कम बेकार की बातों में तो याद नहीं रखने हैं। यही तो मैं कहता हूं, तो हम क्या करना, हम भगवान तो है नहीं जो हमें आदिनाथ का नाम, अजितनाथ का, उनका याद रहे तो ठीक है, आदिनाथ अजितनाथ का रहे तो उनका भी भूल जाओ तो चले। क्या बोल रहे, क्या पंडित कैसा है जी? ये सच्ची बात है, मैं ये जो बोल रहा हूं, एक एक शब्द मेरे हृदय से निकला हुआ है, मेरे चिंतन का किया हुआ है, मैं ऐसे पागलपन में नहीं बोल रहा हूं। क्या जब आपकी तबीयत खराब थी तब ने तो आपने समाधि में संलेखना की बात नहीं करी, और अच्छी तबीयत हो गई तो आप बात कर। अरे भाई, अच्छी तबीयत में ही कोई चीज सोची जा सकती है, कोई लिखी जा सकती है, क्यों? कोई खराब में क्या लिखी जाएगी? तो आप किसने कहा मर रहे? मैं तो तब तक चीजें को तैयार हूं जब तक जी हूं। आप समझ में आई ना? अब मरने का प्रसंग आ गए तो समझ में आया ना कि भाई देर का ही की। मरने का प्रसंग आए तो एक सेकंड की देर नहीं कि नहीं नहीं, आपको जिसको जो कहना हो, आपको अंतिम इच्छा बतानी हो, मैं तो सबको सब कह चुका, जिससे मुझे जो कहना है वो मैं रोज ही नहीं कह देता, रोज ही नहीं कहता, बच्चों से सबसे। अब मुझे किसी को मरते समय किसी से कुछ नहीं कहना, क्यों? पहले चाहता था कुछ कि ये कह जाऊंगा, ये कह जाऊंगा, ये कह जाऊंगा, ये कह जाऊंगा, अब मुझे वो कह जाऊंगा वाली बात निरर्थक दिखने लग गई। क्यों? कि तेरे को जो सहज भाव से होना है ये तेरे चित्त को स्वीकार नहीं है, इसलिए तू कहता है कह जाऊंगा कह जाऊंगा। जो होना है उसे स्वीकार करना चित्त से, झगड़ा खत्म। क्यों खंडला जी, समझ में आता कि नहीं आता? एक ही बात के मैंने इसमें लिखा है, उसमें कि जो प्रजाओं की क्रमबद्धता है ना, केवली के ज्ञान में जो झलका है, उसको बिना मीन में किए सरल सहज भाव से स्वीकार करना, बस इसका नाम संलेखना है।